मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 13 जनवरी 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी के साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने अभी फरवरी मार्च में होने वाली एकेडमी की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं प्रांजल, आप दिल्ली से हैं, गौरव बाबू आप शाहजहानपुर से हैं, विपिन कुमार गुप्ता आप सिरोंज मध्य प्रदेश से हैं और रंजीत धनलाल धोमने आप गोंदिया महाराष्ट्र से हैं। तो प्रांजल, गौरव, विपिन और रंजीत आप सभी चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि आज शुक्रवार है, शुक्रवार को मैं नियमित रूप से कुछ सूचनाएं आप सबको देता हूं और आप सब उन सूचनाओं से बहुत वाकिफ भी हैं जो पहले से सुन रहे हैं। दोस्तों सूचना यह कि शनिवार और रविवार को छुट्टी का दिन होता है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टियों को मैं लेकर के चलता हूं, तो सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन कल सैटरडे को आपको प्रेस क्लिपिंग्स मिलेंगी, जो भी इम्पोर्टेंट प्रेस क्लिपिंग्स होंगी वो आपको पढ़ने को मिलेंगी। और बल्कि सच पूछे तो छुट्टी, चूंकि अगले दिन भी छुट्टी होती है, अगले दिन तो कुछ भी हम आपको अलग से अवेलेबल नहीं कराते, तो पढ़ने के लिए या कुछ होमवर्क के लिए कुछ और चीजें भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं और उनमें होता है दोस्तों योजना और कुरुक्षेत्र हिंदी और इंग्लिश के एक एक, यानी कि टोटल चार आर्टिकल, दो आर्टिकल योजना के और दो आर्टिकल कुरुक्षेत्र के। ये वो आर्टिकल होते हैं जिन्हें आप एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट थोड़ा मान सकते हैं। और ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोगों को एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, कोशिश होती है कि वो सिविल सर्विस के पैटर्न पर हो और ऐसे टॉपिक पर हो जिसके सिविल सर्विस में पूछे जाने की ज्यादा संभावना हो, और इसी बहाने ताकि आप एक टॉपिक भी अच्छे से तैयार कर लें और आपके लिखने की प्रैक्टिस भी होती रहे। तो मित्रों एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है और जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनके पास स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ सूचनाएं थी, अब हम लोग आते हैं न्यूज एनालिसिस पर। मित्रों आपने आकाशवाणी की खबरें सुनी होंगी, सच पूछे तो कल के आकाशवाणी में कुछ ऐसी खबर है नहीं जिसको लेकर के अपन लंबी बात कर सकें, और यहां तक कि कंटेंट के दृष्टि से भी मुझे कुछ बहुत ज्यादा चीजें सुनाई दी नहीं, समझ में नहीं आई। एक जलकट्टी जो एक तमिलनाडु का जो एक खेल होता है जो पोंगल के समय में, खासकर जो अभी आने ही वाला है, उससे उसमें खेला जाता है, सांड की लड़ाई जैसा एक खेल होता है। अगर आपने चैनल्स देखे हो तो चैनल्स में इसे दिखाया भी जा रहा है। इस पर अभी फिलहाल रोक लगी हुई है और रोक इस बात को लेकर के बल लगी हुई है कि इसमें जो पशु हैं उन पर एक तरह से अत्याचार जैसा होता है। अब इस पर चूंकि एक ट्रेडिशन से संबंधित है, ये तमिलनाडु की अपनी परंपरा का भाग है, वो ऐसा करते हैं, तो अब तमिलनाडु सरकार का कहना है कि नहीं ये हमारी परंपरा है और हमें इसकी छूट मिलनी चाहिए, लेकिन कानून नियम कुछ और कह रहे हैं। तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट अभी क्या डिसीजन देती है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट केवल ये है, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया था कि आप इसकी सुनवाई थोड़ा सा जल्दी कर लें क्योंकि पोंगल आने ही वाला है, ताकि उससे पहले आपका फैसला अगर आ जाए हमारे पक्ष में होगा तो हम अपने इस परंपरा का पालन कर लेंगे, इस खेल को खेल लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आपकी सुनवाई कब की जाए और निर्णय कब दिया जाए इसका फैसला करने का अधिकार आपको नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये एक छोटी सी घटना है। दूसरी जो न्यूज है मित्रों वो कैशलेस सोसाइटी को लेकर के है, जो हमारे वित्त मंत्री जी का बयान है कि अब जो कैशलेस जो की जो स्थिति आएगी उसका आगे बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें मित्रों कोई दो राय नहीं है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था कैशलेस की तरफ बढ़ेगी। देखिए 100% कैशलेस तो कहीं नहीं होता है। आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि अमेरिका जैसे देश जहां बहुत पहले से ये सब चीजें हो चुकी हैं, वहां भी लगभग लगभग 15-20% लेन देन अभी भी कैश में ही होता है, डॉलर में ही लेन देन होता है, हमने खुद देखा है। और खासकर जो बाहर के लोग आते हैं, जो ट्रेवल जो आप ही आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो तो कैश में ही लेना देना पसंद करते हैं। कैशलेस तो नहीं होता है, लेकिन अगर भारत में मैं समझता हूं कि 55-60% भी अगर कैशलेस की स्थिति में आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जब लेन देन रिकॉर्डेड होने लगेगा, मतलब उसका बकायदे बैंक के पास प्रमाण है कि मैंने ये खरीदा, मैंने साल भर में इतना खर्च किया, तो अब मुझे बताना भी तो पड़ेगा ना कि भाई अगर साल भर में मैंने इतना खर्च किया है तो ये खर्च करने के लिए पैसा आया कहां से। और चूंकि वो सारा का सारा लिखित रूप में होगा तो वही फिर टैक्स के लिए मुझे बाधित करेगा कि मैं अपने पैसे का सोर्स बताऊं, मैं अपनी इनकम के सोर्सेज बताऊं, और फिर उस इनकम के सोर्सेज के आधार पर जो मेरी इनकम बनती है उस इनकम पर जो भी टैक्सेस होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के फॉर्म में हो या जीएसटी के फॉर्म में, चाहे मैं जिन चीजों का यूज कर रहा हूं, तो सरकार के निगाह में तो वो चीज आ ही गई है कि इन्होंने इस चीज को कंज्यूम किया है, तो ये इस चीज का टैक्स जीएसटी दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है मित्रों कि कैशलेस की सिचुएशन जिस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हमारा जो राजकोषीय जो आय है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। और जब सरकार की आय बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से फिर सरकार उसका उपयोग, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करे, चाहे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए करे, करती है। मैं यहां एक बात आप लोगों को विशेष रूप से बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जब हम सोशल वेलफेयर प्रोग्राम की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ये गरीब देशों के लिए जरूरी होता होगा कि वो सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम अपने यहां करें, लेकिन फ्रेंड्स जो सच्चाई है वो यही नहीं है। नो डाउट कि जो भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र हैं या अफ्रीका के बहुत से जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, वहां जो वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं वो सरकार की प्राथमिकताओं में होते हैं और सरकार के पूरे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में लग जाता है, क्योंकि वहां आर्थिक साधन उतने नहीं है गरीबों के पास, लेकिन वो अगर आपके सिटीजन्स हैं तो उनकी जरूरतों को तो पूरा करना एक राज्य धर्म बनता ही है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन डेवलप्ड कंट्री में भी बहुत से सोशल प्रोग्राम किए जाते हैं, उनका स्वरूप थोड़ा सा दूसरा हो जाता है, प्रायोरिटीज दूसरी हो जाती हैं और जो प्रोग्राम है उनके लेवल अलग हो जाते हैं, बस अदरवाइज वहां भी सोशल प्रोग्राम्स की जरूरत होती है। जैसे अमेरिका में जो हेल्थ केयर है वो बहुत महंगा है, मतलब कल्पना नहीं कर सकते कि वहां अगर कोई बीमार हो जाए तो अगर सरकार की सुविधा न मिले तो पता लगेगा कि उसी में वो लूटपुट गया है पूरा का पूरा, इतने महंगा वहां हेल्थ केयर है। तो दोस्तों अभी आपने सुना होगा कल या परसों जो अब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं ट्रंप, उन्होंने कहा कि वो जो ओबामा केयर योजना प्लान है उसको वो खत्म कर देंगे। ओबामा जी जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने सेकेंड टर्म में अपने अब एक हेल्थ केयर प्लान वो लेकर के आए थे ताकि गरीबों को भी सामान्य लोगों को भी हेल्थ की फैसिलिटी मिल सके, वो थोड़ा सा और इजी उसको उन्होंने बना दिया था, ओबामा के नाम जी के नाम से ही है ओबामा हेल्थ केयर। अब ट्रंप ने कहा है कि उससे वो खत्म करेंगे, तो खैर वो तो चलिए एक अलग बात है, लेकिन मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं कि वहां भी जो हेल्थ केयर है कि कैसे अपने सिटीजन्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए वो वहां के वेलफेयर प्रोग्राम में है। वहां भी लोगों के लिए रात में रैन बसेरा की व्यवस्था की जाती है कि जिनके पास घर नहीं है वो क्या करें, कहां रात गुजारें, तो उनके लिए भी उस तरह के मकान बनाए जाते हैं, उस तरह के शेड्स बनाए गए हैं ताकि वो वहां रात गुजार सके। तो ये जो वेलफेयर ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं इसको आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि केवल हम ही उस पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया इस पर खर्च करती है, क्योंकि कोई भी देश अगर जिसे हम बहुत धनी राष्ट्र भी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हर व्यक्ति धनी है, ऐसा नहीं है। वहां भी ऐसे लोग हैं जिनको सरकार के सहयोग की जरूरत पड़ती है, और खासकर अब तो आप जापान जैसे देशों में जाइए देखिए कि कैसे वहां जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब वो जो ओल्ड एज में जो है वृद्धावस्था में नो डाउट कि शारीरिक रूप से वो कमजोर हो गए हैं, अब वो अपनी कमाई कर नहीं सकते, बच्चों से अलग रह रहे हैं। अब जो भी वहां का एक सांस्कृतिक स्वरूप हो, अब तो भारत में भी यही होने लगा है, ओल्ड एज होम बनने लगे हैं। अब सवाल यह है कि वो उनका जीवन यापन कैसे हो, और अभी ऐसा समय है जब उन्हें हेल्थ की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है और हेल्थ सबसे महंगा होता है, तो अब उनके लिए क्या किया जाए। तो आप उसे एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के तहत ही तो लेकर आएंगे। तो ये जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है इसको आपको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखना होगा। दोस्तों इसको मैं इसलिए भी थोड़ा सा आपको मैंने विस्तार से बताया ताकि आपका एक विजन व्यापक हो सके। और दूसरा आप देखेंगे कि जैसे हम आरक्षण की जब बात करते हैं भारतीय संदर्भ में, जब रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो इस पर अलग अलग दो तीन चार ओपिनियन मिलती हैं। मित्रों ये जो आरक्षण को है फिर आपको इसी तरीके से इसे भी व्यापक तौर पर देखना होगा। हम अपने ही हित अहित के आधार पर उसे न देखें, इसे व्यापक रूप में देखें। व्यापक रूप में मतलब सोसाइटी एज ए होल या कंट्री एज ए होल। तब आप जो भी निर्णय लेंगे भले ही वो आपका अभी का जो निर्णय है वही एग्जिस्ट करता हो, मैं उस पर कोई दखल नहीं दे रहा हूं आपके अपने कंक्लूजन पर, लेकिन उसकी तार्किकता बदल जाएगी, उसके लिए जो आप तथ्य पेश करेंगे वो डेफिनेटली बदल जाएगा क्योंकि आपका विजन बदल चुका होगा। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं आप देखेंगे कि उनमें भी अलग अलग तरीके के आरक्षण की बात है। हमारे यहां जाति पर आरक्षण है तो पता लगा कहीं नस्ल को लेकर के आरक्षण है, कहीं जेंडर को लेकर के आरक्षण है। क्योंकि जो कमजोर वर्ग है, देखिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती अगर वहां डेमोक्रेटिक सेटअप है तो, वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट है तो यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, दूसरों के समकक्ष लाया जाए की बात नहीं है, लेकिन वो समाज की मुख्य धारा में तो शामिल हों। तो मित्रों चूंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विस की तैयारी के करने के स्टूडेंट के लिहाज से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह है कि जो आपका आपकी जो एनालिटिकल पावर है उसका एक्सपोजर व्यापक होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने छोटे से दायरे में ही चीजों को सोच रहे हैं और अपने निष्कर्ष दे रहे हैं, एक्सपोजर व्यापक होना चाहिए और जो हम बात कहें वो एनालिटिकली तार्किक रूप से सही मालूम पड़ना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल इमोशनली ना हो, सुपरफिशियल ना हो। तो ये तो देखिए तभी हो सकता है जब आप थोड़ा सा दूसरे देशों में दूसरे सिस्टम को जानेंगे, चीजों को हम जब अपने स्वार्थ अपने हित और अपने दायरे से निकलकर बाहर देखेंगे तब फिर चीजें समझ में आएंगी कि वास्तव में स्टेट का क्या रोल होता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और किस तरीके से जो वेलफेयर ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मित्रों टैक्सेस की भी जरूरत होती है क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए ही, है ना। वैसे भी अगर आप रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत उठा करके देखेंगे तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत में यही है कि कुछ लोगों ने मिलकर राज्य का राज्य से एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया, एक समझौता किया और उससे कहा कि भाई आप हमारी रक्षा कीजिए और उसके बदले में हम आपको टैक्स देंगे। तो दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है और उसी से यह राज्य अस्तित्व में आया है। तो टैक्स तो एक अनिवार्य हिस्सा होता ही है, अदरवाइज राज्य की आमदनी कहां से होगी। और डेफिनेटली जैसे जैसे हम कैशलेस की तरफ बढ़ते जाएंगे टैक्स का कलेक्शन बढ़ता जाएगा और उसके प्रमाण थोड़े से दिखाई भी देने लगे हैं। तो मित्रों इस तरह से कैशलेस को लेकर के मैंने आपसे थोड़ी सी बात की है और मैं इसलिए इस पर जब भी मौका मिलेगा मैं बात करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अब मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाएंगे, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो जून में प्री में बैठेंगे और उनके लिए भी जो फिर बाद में अक्टूबर में मेंस में बैठेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके डायमेंशंस भी बहुत है। दोस्तों अब मैं आता हूं आज न्यूज़पेपर्स पर। आज मैं न्यूज़पेपर्स की आपको काफी क्लिपिंग्स आज भी प्रोवाइड कर रहा हूं और मेरे लिहाज से तो देखिए सारी क्लिपिंग्स इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिहाज से, डेफिनेटली इसमें से कुछ क्लिपिंग्स ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ कम इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं भी हो सकते हैं, तो वो चॉइस करना आपका अपना अधिकार है और आपको अपने अधिकार का उपयोग करना भी चाहिए। मित्रों, एक दैनिक भास्कर की एक क्लिपिंग है, खासकर लघु उद्योगों छोटे उद्योगों को लेकर के। मैं चाह रहा था कि आज मैं इस पर बात करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं, ऑलरेडी हिंदी में आर्टिकल है तो इस पर बात करना ज्यादा मायने नहीं रखेगा, आप लोग खुद ही पढ़ करके समझ जाएंगे। मित्रों, आपको एक बड़ा कंट्राडिक्शन जैसी स्थिति दिखाई दे रही होगी जो पूरी दुनिया में है और पता नहीं लोग समझते हुए भी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उसका क्या हल होगा समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ हम हाई टेक्नोलॉजी पर जा रहे हैं, रोबोट आप पर आ गए हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ गए हैं, हर जगह से हम आदमी को विस्थापित करते जा रहे हैं, आदमी की जगह मशीन लेता जा रहा है, चाहे वो कंप्यूटर के रूप में हो या रोबोट के रूप में हो। हर जगह बेरोजगार की स्थिति इसी वजह से आ रही है और हर देश इस संकट से जूझ रहा है। आपने अमेरिका के चुनाव में भी देखा कि ट्रंप की जीत का कारण ही एक बहुत बड़ा ये बताते हैं कि उसने कहा कि मैं अपने लोगों को रोजगार दूंगा। भारत में भी यही स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है और सरकार हमेशा, आप देखिए प्राइम मिनिस्टर को सुन लीजिए या दूसरे हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके लेख पढ़ लीजिए कि रोजगार प्रोवाइड करना पहली शर्त है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लेकिन हम भी हाई टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया के प्रतिस्पर्धा में हमें भी बने रहना है। तो एक बड़ा विचित्र किस्म का कंट्राडिक्शन देखिए कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हाई टेक्नोलॉजी चाहिए जो मनुष्य को विस्थापित कर रही है, दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि जो लघु छोटे उद्योग हैं इनका जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। मतलब भारत में तो ये कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 38% तक है मुश्किल से, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं जिन्हें बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाले देश समझते हैं वहां जो लघु मध्यम उद्योग हैं उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। जैसे जर्मनी में 52% है, चीन में 58% है, आप इस आर्टिकल में देखेंगे। भारत में मात्र 38% है जबकि आबादी इतनी ज्यादा है। चाइना में अगर आबादी अधिक है तो आप देखिए कि लघु मध्यम उद्योग में परसेंटेज भी 58 है उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों आपको ये बड़ा विचित्र सा कंट्राडिक्शन दिखाई देगा। तो ये संकट है क्या, किस तरह का सोल्यूशन हो सकता है, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। इसको लेकर के एक आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सोचने के लिए बीच के दो दिनों के लिए ये टॉपिक भी दे रहा हूं कि एक तरफ हाई टेक्नोलॉजी वो हमारे लिए जरूरी है, दूसरी तरफ अपने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना हमारे लिए जरूरी है। और आप देखेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सिविल सर्विस के मेंस में किसी न किसी तरीके से हर साल पूछ लिया जाता है, इस पर विचार कीजिएगा। एक बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है दोस्तों, खासकर वो जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको लेकर के एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, उसको भी पढ़िएगा कि कैसे जो हम आर्मी ऑफिसर्स जो हमारे होते हैं जो इतने योग्य होते हैं कैसे हम उनका समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे उनके रिटायरमेंट के बाद, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसको लेकर के अच्छा अच्छे तरीके से वो लिखा गया है, आप उसे देख लीजिएगा। मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। एक बहुत प्यारा सा मेल मिला है हर्षा का, गोहेला का, जो अहमदाबाद गुजरात से है। हर्षा, आपके मेल के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ये हर्षा हमारे फिफ्थ बैच के स्टूडेंट रही हैं, उन्होंने आप सबके लिए जो अभी क्लास में 19 फरवरी को आने वाले हैं मैसेज दिया है। दोस्तों बहुत लंबा मैसेज है कि आप कैसे इस समय का उपयोग करेंगे, कैसे खाली होकर के आए और ये जीवन पर आपके बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा, आप इस समय को बिल्कुल खराब न होने दें, व्यर्थ न जाने दें, इस तरह का उनका लंबा मैसेज है। लेकिन मैं संकोचवश हर्षा माफी चाहूंगा कि मैं आपके मैसेज को स्टूडेंट को जो कहते हो नहीं सुना पा रहा हूं, लेकिन आपकी भावनाओं के प्रति मैं अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। और मित्रों, कुछ अन्य दोस्तों के नाम हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव दरभंगा बिहार से, तनु कुमार तोरपा झारखंड से, विनोद यादव गुलाबखेड़ा लखनऊ से, सलमान अली कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, विवेक वर्मा, अंकित यादव हेमंत घोड़ के पुणे महाराष्ट्र से, विशाल मिश्रा इंदौर मध्य प्रदेश से, गौरव कुमार इलाहाबाद से और आशीष बंसल, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं और इन शब्दों के साथ कि बीच के ये दो दिन आपके बड़े शुभ हों, सुखद हों और बहुत ही उपयोगी हूं। तो दोस्तों मेरा अभिवादन अब स्वीकार करें। नमस्कार।